نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في قران مجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفضل مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد. انسان ہر وقت دو حالتوں کے اندر ہے, دو میں سے ایک حالت اس کی ضرور ہے. یا تو وہ کوئی گناہ کر رہا ہے, چھوٹا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, اخلاقی گناہ ہے, معاشی گناہ ہے, گناہ کو حد تو نہیں تھا. یا دوسری حالت ہوگی کوئی نیک کام کر رہا ہے, نیک عمل ہے, جس طرح گناہ بے انتہا ہے اس طرح نیکم بھی بہت زیادہ ہے. ہر سانس کے ساتھ آدمی نیکم کر سکتا ہے, ایسی ہے نا بھائی؟ ہم تجزیہ کر کے دیکھیں. میں نے تو غور کی, دو چیزیں مجھے نظر آئیں, یہ دو آپ کو بتا رہا ہوں. کون سی؟ پہلی حالت, یا تو گناہ کر رہا ہو آدمی, غور کرے آدمی, کیونکہ گناہ کرتے ہو آدمی پتہ نہیں چل رہا میں گناہ کروں, گناہ کر رہا ہوتے ہو. اور دوسری حالت کون سی ہے؟ نیک عمل کر رہے ہیں, کسی نیکی میں ملوث ہے. اب ان دونوں حالتوں میں سے کون سی اچھی ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے؟ میں عرض کروں آپ سے کہ دونوں ہی حالت بہت خطرناک ہیں, اور دونوں ہی حالتیں جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہیں انسان کو, چاہے وہ گناہ کر رہے چاہے وہ نیک عمل کر رہے, دونوں خطرناک. گناہ کی خطرناک کیسے ہے؟ وہ تو ظاہر ہے, وہ پتہ ہی ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. گناہ کرنے والا شخص جو گناہ میں ہوتا ہے تو وہ اس میں جو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے, اللہ کی ناراضگی پر ہوتا ہے, اللہ اس وقت اس سے سخت ناراض ہوتا ہے, اس برکتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں, دعائیں اس کی اللہ قبول نہیں کرتا, لعنتیں اس پہ پڑ رہی ہوتی ہیں, عذاب اس پہ اترنے شروع ہو جاتے ہیں, دلوں کی کیفیت اس کی بدل جاتی ہے, منوستوں کا سایہ اس پہ چھا جاتا ہے, بربادی اس کی شروع ہو جاتی ہے, شیاطین اور جنات اس کو گھیر لیتے ہیں. یہ ہر گناہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے, یہ یاد رکھ. چاہے گناہ وہ ذرے کے برابر ہے تب بھی یہ کیفیت ہے. بالکل جب بس میں جا رہا تھا وہ میں نگاہ اٹھ گئی, ختم. جس وقت نگاہ اٹھی تو آدمی اس کیفیت پر ہوتا ہے, بدترین کیفیت پر. جی حالت ہوتی ہے گناہ کے ساتھ. جی ہماری پتہ نہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم تو جناب فلاں یہ کرتے ہیں, ہم تو پتہ نہیں کیا ہم نے ایسے گناہ کر دیا, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہم تو نمازیں بہت پڑھتے ہیں جناب, وظیفے بھی بہت کر رہے ہیں, اس نے وظیفہ ہوتا ہے وہ بھی کر لیا, اس نے وظیفہ ہوتا ہے وہ بھی کر لیا, پتہ نہیں کتابوں وظیفوں ہم نے کر لی ہیں, قرآن بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, یہ ہے اس میں بھی کام نہیں ہمارا بنتا بھجا, گناہ نہیں بننے دیتا. گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, اس کی بربادی ہو گئی, تباہ ہو گیا. تو یہ تو خطرناک ہو گیا نا بھائی, کہ گناہ کرنے والا شخص اللہ نہ کرے अब गुनाह की हालत में मर गया तो डाइट कहां जाएगा? जानने बचा देगा उसको गुनाह। नहीं जी सारे लोग कर रहे हैं, हम क्या करें, छोटे गुनाह है जी, मैं तो इबादतें भी तो करता हूं ना, रोजे भी तो मैं रखता हूं ना, मैं ये भी तो कर लेते हैं जी, फला भी कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। ला तब्तलु अमालकुम, अल्लाह ताला कहते हैं अपने अमालों को जाया मत करो, कह ना कुरान में है ईमान वालों अपने अमालों को जाया मत करो। ये अमाल भी कभी जाया हो जाते हैं, जो हम कहते हैं नमाज में जाया हो जाते हैं, कैसे? जैसे ही आपने कोई अमल किए बहुत बड़े, साथ में आपने गुनाह किया, गुनाह के साथ फौरन लाल तो बरसी, नष्ट हो गया, क्या खतरनाक जबरदस्त जहन्नम। अब हम अपने अपने गिरेबान में डाल के देखें, सुबह से शाम तक कहाँ जाती है नजर हमारी, देखें चलो बात समझ आ गई। लेकिन ये नेक अमल के साथ जहन्नम में आदमी कैसे चला जाएगा? बोले सुभान अल्लाह, ये क्या नुकता है? आज तक तो हम ये समझे यार तुम नेक अमल करो तो भाई सीधा जन्नत, ये करो तो फला जन्नत, जिक्र कर लो तो जन्नत, चाहे इतना कुरान पढ़ लो तो जन्नत, यही कहते हैं लोग। भाई हम तो अभी जिक्र करेंगे तो जन्नत से पोए हैं माशाल्लाह, हमने तो फना कर लिया है, बड़ी बड़ी बशारतें हैं, है ना, ये भी जहन्नुम सीधा डायरेक्ट ले जाता है नेक अमल भी। वो तो दोजख में जा रहे होंगे गुनाहों की वजह से, और नेक आदमी किस वजह से जा रहा होगा? नीकों की वजह से। कैसे? कि जिस तरह गुनाह के अंदर खबासतें मैंने आपके बयान फरमाई, इसी तरह इसमें क्या खतरा है नेक अमल में? ये क्यों जहन्नुम में लेके जाएगा? क्यों? कि नेक अमल के साथ इंसान में किबर पैदा हो गया, अल्लाह अकबर, किबर, इतना बड़ा गुनाह है जी, मैं तो ये हूं जनाब, आज मैं बैठा हूं पाकिस्तान मुसल्ले पे बैठूं, जिक्र कर रहा हूँ, मैं तो शेख आजम हूँ जनाब, मेरा तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं, मेरे पीर ज्यादा हैं, मेरे मुजीद ज्यादा हैं, मैं तो लोग आते हैं जनाब, जुमा भर जाता है जब तकीर करता हूँ, मेरी क्या कुरान की तफसीर है जनाब, बोल नहीं रहा, अंदर से शैतान उसको बुला रहा है। मेरे भाई ये कड़ी बातें हैं, लेकिन बहुत सही बात कर रहा हूँ, ये आखिर की बातें हैं, बुजुर्गान दीन नहीं मैं रखू, मैं ये इलाज है। हजारों लोग इस हालत के अंदर होंगे अल्लाह अकबर, बड़े बड़े उन्होंने जनाब अलकाबात होंगे, बड़ी बड़ी निशाने होंगे, बड़े बड़े पीर होंगे या शेख होंगे, पता नहीं क्या कुछ होंगे, लेकिन क्या होगा, किस मुकाम पे होंगे, कितना बड़ा हो, अल्लाह कहे तुम छोटा गुनाह नहीं किया है, बेवकूफ़े तुम कुरान नहीं पढ़ते थे, तुम्हारे इस अमल ने तुम्हारे नेकियों ने तुम्हें कहाँ बर्बाद किया जो मैंने तुम्हें इतनी चीज़ दी थी, कि तुम्हें तो वो चीज़ पैदा होगी थी जो शैतान की मैंने मिसाल तुम्हें दी थी। शैतान इतना अपनी इबादतों पे, अपने इलम पे इतना इतना घुमंड हो गया था, इतना मगरूर हो गया था, कि जिस वजह से अल्लाह ताला ने उसको रिजेक्ट किया वो कौन सी वजह थी? सिर्फ एक वजह थी, वो क्या थी? किबर, अल्लाह अकबर। और अगर मुझमें एक किबर पाया जा रहा है इतनी नेकियों के बाद, अल्लाह बुलंदी दे रहा है और मुझमें क्या है? वो किबर है, उजुब है, रियाया है, रिया है, पत्नी हजारों किस्म की बातें उस वजह से, उस दर्जे की वजह से जो अल्लाह ने मुझे दिया, सब कुछ है। देखें तो जनाब सब कहेंगे जनाब ये तो बड़ा माशाल्लाह, ये क्या बात है इसकी, इतना बड़ा मजमा लग जाता है जनाब, इतने लोग आ जाते हैं, इतनी ये हो जाता है ना आजकल जी। लेकिन जो तराजू अल्लाह पाक ने रखा है तोलने के, एक तराजू जो रखा है अल्लाह सुभान तआला ने, उस तराजू की अजीब हालत है, वहां तो जब इंसान जब तुलेगा तो वो तो कैफी तजीब हो जाएगी उसकी, तो ये इसमें क्या है खतरा? इतना खतरा है कि गुनाह से ज्यादा इसमें ज्यादा खतरा है, ये भी आप समझ रहे हैं, गुनाह से ज्यादा दोस्तों इसमें ज्यादा खतरा है। एक आदमी मिसाल दे रहा हूं वहां से, तो मैंने हिफ्ज नहीं किया कुरान, दो चाहे उसको कह दो, लेकिन मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया, मेरे बात बात पर यह हो सकता है मैंने हिफ्ज किया, मैं कुरान पे फर्क हो गया ना, मेरे में एक चीज नहीं है भाई, दूसरे में वो चीज उसमें आ गई, तो वो क्या होगा? मेरे में तो है, इसमें तो नहीं है, यानी क्या है, इतनी बड़ी चीज हो जाती है उसमें कि हर आदमी उसके नजर डाउन हो जाता है, हर आदमी उसके नीचे है, वो ऊपर है, मेरे जैसे तो हो ही नहीं सकता जनाब, मेरे जैसे ही करके दिखाए कोई, اندر وہ چیز اس کے موجود ہوتی ہے, ایکشن بھی کبھی کبھی بتا دیتا ہے, ظاہر بھی کبھی ہو جاتا ہے وہ آدمی. تو یہ تو بھائی میرے, یہ تو اس سے بڑا گناہ ہو گیا. یعنی گناہ نظر تو آ گیا, کبھی تو کچھ تو ہو ہی جائے گا گناہ, دیکھ کے کوئی تھپڑ مار دے گا, سمجھا دے گا کہیں لٹا چیری, لیکن اس کو کون سمجھے؟ اب اس کو سمجھانے بڑا مشکل ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے, آپ اس کو کہیں گے وہ تو بیٹھے مسلح پہ ممبر پہ, آپ اس کو کہیں حضور یہ تو, وہ تو کہا تیری ایسی تو مجھے کہنے آ گئے, تیری جرت کیسی ہوئی ہے تو نے مجھے یہ بات کہہ دی, ہوا کیسے ہے بجما. تو اب سمجھ آئی بات؟ تو یہ سب نیکی کہاں لے کے جا رہی ہیں ہمیں؟ بولیں سبحان اللہ, باتیں تو اچھی ہیں, عقل والوں کے لیے تو باتیں اچھی ہیں. جہاں ہم کہاں جاتے ہیں, اونچا بولے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں. تو کبھی تجزیہ بھی کر لینا آپ, بہت ہی خسارے میں ہوگا وہ مرد ہو عورت, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سن رہے ہیں سب لوگ میری بات ہے, مجھ سے تعلق رکھنے والے بھی سن رہے ہیں, انتہائی خسارے میں وہ لوگ ہوگا جس نے یہ تزکیے کا پروگرام شروع نہیں کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایسا پروگرام ہے تزکیے کا کہ اس میں سیلف اسسمنٹ انسان کر رہا ہے, دونوں کیفیت اس کے اندر نکل رہی ہے الحمدللہ, اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہو رہا ہے کہ اس میں الحمدللہ, یہی اللہ چاہتا ہے, یہی اللہ چاہتا ہے کہ تجھ میں یہ احساس پیدا ہو جائے جب آپ وہ چیٹس کر رہے ہیں الحمدللہ, بولے سبحان اللہ. نہ کرنے والا شخص ان دونوں میں سے کسی چیز میں مبتلا ہے تو کبر ہے, اونچا سمجھتا ہے, شیطان نے جکڑا ہوا ہے, یا وہ شیطان اس کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی اپرچونٹی سی وہ مرد وہ عورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ وہ بچ جائے, جہنم سے نکل جائے. سبحان اللہ. تو یہ پھر میں آپ کو دہرا رہا ہوں بات, یہ دیکھیں خود بیان بتا رہا ہے, یہ بات میری گفتگو بتا رہی ہے آپ کو کہ کتنا بڑا کرم ہے. جب تک سیلف اسسمنٹ نہیں ہوگی آپ, ہم جج نہیں کریں گے اپنے آپ کو, آپ کیسے جج کر سکتے ہیں صبح سے شام تک کہ میں جھوٹ بولا ہے, غیبت کی نہیں ہے؟ بولے سبحان اللہ, کہ وہ آپ کو شیٹ بتا دے گی شام کو کہ تو جھوٹا تھا. جب وہ جب شیٹ آپ کو بتا رہی ہے جھوٹا تھا, اندر ایک چیز پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے اندر ہوگی یا نہیں ہوگی کہ یار تو غلطی ہوگی آج میں. تو کل کا دن جو آپ کا ہوگا الحمدللہ اس نے آپ کو اجاگر کر دیا, ول ٹیک دا بیسٹ, وی شوڈ ڈو دیٹ, کرنا چاہیے سب کو. یہ نہیں کتنا محروم ہو وہ شخص, اس نے اس اپرچونیٹی کو اویل نہیں کیا, حاصل نہیں کیا, اللہ نے گھروں تک پہنچا دی ایسی چیز. تو خیر یہ تو ایک بات ہوگی اللہ کے احسان کا, میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ کیسے کیسے انسان ناشکرا ہوتا ہے, کہ کیسے کیسے ماحول کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں, لیکن ان چیزوں کی قدر نہیں کرتا, اس کے نیچے کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آج اگر ہمیں احساس ہو جائے, دیکھیں آج آپ دکان پہ کھڑے ہیں, کوئی حساب کتاب دکان کا نہ کریں, آپ کو خسارے کا فائدے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, دکان بیٹھ جائے گی. ہر سمجھدار دکاندار شام کو سوچے گا کہ آج میری سیل کتنی ہوئی ہے, کل کتنی تھی, میرا مال کتنا بکا ہے, تو کل وہ اس پہ اسس کرے گا کہ یہ میرا مال نہیں بکا, یا تو اس کو سیل پہ لگاؤں گا جو بک رہا ہے, یا اس کو اور لا کر ڈالوں گا. ہوتا ہی ہوتا. یہی سمجھدار آدمی الحمدللہ ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے, جب اپنی سیٹ کو دیکھے گا دوسرے دن وہ کہے گا تو بہت خسارے میں جا رہا ہوں میں, اس سے تو یہ بتائی تھی حضرت نے, میں تو بہت شرمندہ ہوں. احساس جگا دے گا اللہ پاک اس کا, اللہ کے فضل سے ایسے ایسے گناہ نکل جائیں گے سبحان اللہ. اس سے بڑا کوئی بیوقوف انسان ہو سکتا ہے جو بھی ایسی کام نہ کرے گا بھائی, اپنے آپ کو سس کرتا ہے. تو اب یہ دو کام ایسے ہو گئے دوستو, کس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, دونوں میں سے کسی کام میں ہوتا ہے اور دونوں کام لے جانے والے تھے. آؤ اس کا حل بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاؤں, بولو سبحان اللہ. اس سے بچ نہیں سکتا, پہلی بات گناہ ہم کر رہے ہیں, ڈائریکٹ جنت کیسے مل جائے گی, اللہ کیسے راضی ہو جائے گا, ہماری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی, ہمارے یہ اعمال ہمیں جنت میں کیسے پڑیں گے, گناہ جو کر رہے ہیں گناہ سے چھٹکارا. اللہ پاک نے کمال, سبحان اللہ, اس کی رحمت کا کمال, اس کی فضل کا کمال دیکھیں کہ کیسا علاج رکھا ہے اس کا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا علاج یہ ہے, یہی گناہ, دیکھ الٹا جا رہا ہے معاملہ, یہی گناہ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے, یہی غلطی ہیں تمہیں جنت میں لے جائیں گے. اللہ نے ایسا علاج اس کا بتایا. صرف ایک کام ہم نے کرنا ہے, بے شک 10,000 دفعہ گناہ ہو جائے ہمارے دن کے اندر, لیکن ایک کام کر لیں, ایک کام کر لیں. وہ کیا؟ کہ جس وقت بھی گناہ ہو اسی وقت توبہ کر لیں. بولے سبحان اللہ. بازار ہو, دکان ہو, گاڑی میں ہو, گھر ہو, ہوائی جہاز میں ہو, مسجد میں ہو, مسجد سے باہر ہوں, ادھر ہوں, یہ تسکیہ بتائے گا نا, یہ تسکیہ رپورٹ ہے. احساس کر لیتا نا آدمی اس کو گناہ ہو تو اس پہ رونے نہ بیٹھ دے گناہ پہ, او یار میرے سے پھر گناہ ہو گیا, میں تو یار تمہیں نہیں, اللہ پاک نے کیسے انعام کیا. آپ دیکھیں جو عبادت اللہ پاک نے دی ہے اس میں یہ چیز رکھی ہے. فجر پہ نماز پڑھی, بہت سارے گناہ ہو گئے ہمارے, آیا ظہر پہ اللہ نے صاف کر دیا. کیسا سسٹم رکھا ہے. ایک جمعہ آیا گناہ کرتا جمعے تک, اللہ اکبر, دوسرا جمعہ آیا سارے گناہوں کو صاف کر دیا. ایک رمضان آیا, ایک سال میں پتہ نہیں کیا کیا خواصتیں ہم نے کر دی, جیسی رمضان کا چاند نظر آیا اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک حج آیا, حج کے بعد ہم نے کیا کیا گناہ کر لیے سبحان اللہ. دوسرا حج آیا, عرفات میں بیٹھے, اللہ نے نہ معاف کیا بلکہ نیکیوں میں بدل دیا. کیسے انتظام کیا. تو یہاں پتہ ہی چلتا ہے اس لاجک سے جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے, سسٹم یہ رکھا ہے کہ بندہ ہر وقت جو ہے ان گناہوں کے سبب سے مجھے راضی کرتا رہے, بولا اس کو نہیں کیوں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس گناہ کو نہیں کیوں بدل دیتے ہیں, لیکن شیطان وہ کرنے نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے مایوس نہ ہو میری اس حالت سے, میری حالت سے تو مایوس نہ ہونا. کب جتنا تو گناہ کر سکتا ہے کر لے, ہو گیا گناہ, اچھا پھر گناہ کیا میں نے, گناہ کرنے کے بعد 5 منٹ بعد پھر گناہ کر لیا, پھر توبہ کر لیں, پھر صاف ہو گیا. اس کشمکش کے اندر جب میں توبہ اور گناہ کی کیفیت میں تھا, میری موت ہو جاتی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو تو جنتی ہے, پہنچ گیا جنت نہیں پہنچا, گناہ کچھ میرا بگاڑا, آپ کا بگاڑا نہیں. ہم کرتے کیا ہیں کہ گناہ کے بعد اپنے سر کو ہم نہیں کرتے اللہ کے حضور میں, اپنے سر کو جھکا کے اعتراف جرم کر لیں, اعتراف ذنوب کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے ہو گیا, چھوٹا سا گناہ ہو گیا لیکن یہ تو اس گناہ نے مجھ سے دور کر دیا, میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں اندر تو یہ نہیں کروں گا, پکا وعدہ کر لیں, میں نے اپنا یہ گناہ تھا نا مجھے معاف کر. دوسری اگلے لمحے ملک الموت ہو گیا, گردن دبائی, یہ تو معافی مانگ جی, کہتا جناب نہیں جی, دوسرا کہیں گے تو بڑا بدکار آدمی تھا جناب, رات اس نے شراب پی, میرے ساتھ اس نے زنا کیا, یہ جناب ہم تو رات بھر تماشے لگائے, دیکھو کیسی بری بات ہے, یہ جہنم میں جائے گا. اس کو کیا پتا کہ اس نے سرج ہوا کہ ایک سیکنڈ کا اللہ سے دوستی کر لی تھی, صلح کر لی. یہ راز ہے بٹوین مین اور اس کے کریٹر اور کریٹ کی جو اللہ کے درمیان جو مخلوق ہے اس کا اور خالق کے درمیان کیا ہے, یہ ایک راز کی بات ہے. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے جہنم میں چلا گیا, ان کے گناہوں کو نہ دیکھیں اللہ کی رحمت کو دیکھیں, اس نے پتہ نہیں کب توبہ کر لی. توبہ کے لیے باجا بجانا پڑے گا, ڈول بجانا پڑے گا, کیوں مجمع جمع کرنا پڑے گا, کیا گواہ لینے پڑیں گے, کیا آپ کسی خاص جگہ پہ جانا پڑے گا, خاص عبادت کرنی پڑے گی, نہیں کچھ نہیں, صرف اپنے گردن کو جگا کے میں رب سے صلح کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں, تو کہتا ہے ایک ہاتھ بڑھاؤ تو میں تو پورا ہاتھ بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ, میں تو پنجے ہی بڑھا رہا ہوں, مولا اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تجھے اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں جس وقت تو گناہ کرتا ہوا کرتا ہے. کریں گے بھائی مسئلہ حل ہو گیا, اگر ہم کسی حالت میں گناہ سے ہو رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, ابھی ہم بیٹھے ہیں, ذکر کیا پھر ہو گیا تھک گناہ کے بعد, اللہ نے معاف کر دیا. جب یہ پریکٹس ہوگی اتنی شرمندگی آنی شروع ہو جائے گی, الحمد للہ غیرت و حیا آنی شروع ہو جائے گی انسان کے اندر, یار جی میں نے کام کیوں کر لیا, ابھی تو میں نے کہا تھا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے لیے شیٹ آپ کی بہت کام کرتی ہے الحمد للہ, یہ علاج جو دیا گیا نہیں سمجھے, مسئلہ حل ہو گیا اس کا. دوسرا مسئلہ کیا ہے بھائی, نیکی نیکی ہمیں لے جائیں گی جناب جہنم کی طرف. تقور پیدا ہونا, ریا پیدا ہونا, عجب پیدا ہونا, اس کو کیسے کنورٹ کریں گے جناب, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں ہماری, اس کا بتاؤ دوں علاج آپ کو. میں ابھی ذکر میں آیا ہوں, نیکی ہوگی نا, اگر میں نے وہ علاج نہیں کیا جو بتایا گیا تو مجھ میں ریا بھی آ جائے گی, مجھ میں گھمنڈ بھی آ جائے گا, میں پیری بننے لگوں گا, میں کچھ بھی کرنے لگوں گا, میں نیک بھی سمجھنے لگتا ہوں. دیکھیں یہ ہوتا ہے ہمیشہ, جس نے جو نمازی نہیں ہے اور جس نے نماز شروع کی اس کو ایسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھے, کسی کی داڑھی نہیں ہے, کسی نے داڑھی رکھ لی اتفاق سے, وہ دوسرا اس کو کرن مارنے لگتا ہے. एक आदमी कोई नेक काम कर लिया और दूसरा बेचारा भी नहीं कर सका, उसको टेढ़ा होकर देखने लगता है, ऐसे करते ही नहीं करते, उसको नीचे रहता है, मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। भैया श्रम करो तुम, ये तुम के सामने उसको कह रहे श्रम करो यार तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, अभी उसको 3 दिन खुद हुए नमाज पढ़े। देखो जी मैं सुनो तो अमल करता हूँ, मैंने जनाब इमाम बांधा है, मैं ये करता हूँ, इसको ये तो खुश को नहीं, शर्म नहीं आती इन लोगों को जनाब ये काम नहीं करते हैं, सुनो तो बांध कहते हैं नहीं कहते, जब पूछे क्यों कहता नहीं जी हम तो तबलीग के लिए कह रहे हैं, हम तो ताकि ये भी करे काम किसी बात ढंग होता है हर चीज़ का, तर्ज होती है हर चीज़ की, मस्त बहुत खतरनाक है। ये है कि नेक करने के बाद नेक काम तो उससे ज्यादा खतरनाक है, इसका क्या इलाज हो सकता है दोस्तों, ये सोचो बताओ इसके इलाज, नेकी महफूज हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ना रिया रह जाए, ना तकब्बुर रह जाए, ना उस जो आए उसमें, और वो नेकी जैसे आप करें अल्लाह सुबहाना तआला उसको कबूल करता चला जाए, मजा नहीं आता, ऊंचा बोले सुबह फंसे बैठे हम तो इस दुनिया के अंदर दोस्तों, बड़ा मुश्किल है कब्र तक चले जाए, बहुत मुश्किल है, इन चीजों से बचना चाहिए। अच्छा दूसरी कैफियत क्या है जो हमें इस चीज से निकाल देगी, नेक काम करने के बाद बेशक छोटा सा नेक काम भी हो जाए तो ये चीजें पैदा करेगा शैतान आपने। आप जा रहे हैं, अब आपने एक नेक काम किया कि आप रास्ते जा रहे थे ना तो आपने पत्थर को हटा दिया, क्यों? आपने कहा जी मैंने सुना था एक आलिम साहब जो मैं तकीर फरमा रहे थे, उन्होंने कहा था आलिम साहब ने कि जो रास्ते पत्थर उठा दे, तो आप उन्होंने वाकई भी सुनाया था कि इस पत्थर उठाने के बाद उसका जो माशाल्लाह अल्लाह ने उसको बख्श दिया, फला औरत ने ऐसा नेक काम किया था अल्लाह ने बख्श दिया, हमें आलिम साहब ने किस्सा सुनाया, हम जब जा रहे हैं रास्ते से तो हमने इसे देख के पत्थर उठा दिया, शैतान आ गया, छोटा काम किया बस वो इस काम से अपने आप को बहुत ऊंचा समझ लेगा, पहले तो आगे वाले को कहेगा यार मैं आज जा रहा था मैंने आज पत्थर उठाया, ये तो करना चाहिए हम यार नेक काम, तो शाम तक उसकी काफ़ी अलहमदिल्ला इश्तहार पासी हो चुकी होगी कि उसने रास्ते से पत्थर उठाया था, या उसने थोड़ा सा की बार आ चुका हो घर जाने तक कि मैं बहुत नेक हो गया, मैंने पत्थर उठाया था मस्जिद से, मैंने एक दिन का उठाया था, सब लोग देख रहे थे तो मैंने उस दिन को जेब में डाल लिया। सबसे छोटी नेकी की बात आपसे करूँ, जब अपने नेकी की एक सिफ्त ये हो जाती है, शैतान नफ्स तो चल रहे ना उसको सिर्फ ये बताती है कि दो लोगों को बताता है क्यों नहीं तू आज रोजा रखा है, आज नफिल रोजा है तो उसने रोजा रख लिया, अब खजूर दे रहा है तो पता है नफिल रोजा है तो खजूर दूसरे को दे रहा है आप भी करें, अब तूने रोजा रखा है उसने रोजा तो नहीं रखा उसको तू दे रहा है, होता है कभी देखा आपने? मैंने देखा मस्जिद में काफी होता है, उसको पता चल जाए तूने नहीं रखा मैंने रखा है रोजा, कहना चाहिए ऐसे हाँ, ऐसी इबादत को छुप के करें, ठक से बोतल खोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सही है, लेकिन ये सोचें कि ये गुनाह नहीं है करना ऐसा, लेकिन फाय कि हो सकता है नफ्स और शैतान मुझे जकड़ ले, ऐसे नफीली इबादत कोशिश आदमी ये करे कि छुप के करे ताकि मौका ना दे नफ्स और शैतान को, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज है कि इबादत आपको जहन्नुम में लेके चली जाए और इतना बड़ा गुनाह आपके अंदर पैदा कर दे किबर का, मैं पूरी मस्जिद के अंदर मैं नहीं रोजा रखा है, चलो किसने रखा जना, आज पीर का रोजा मैंने रख लिया, बहुत से तरीके हैं बताने के, सलाम अलैकुम सुनो या पीर दा कर दिया तुझे रोजा रखा है बड़ा मजा आता है, ताकि मैंने तो रखा है रोजा ऐसा देखिए तो क्या है, बहुत चीजें पैदा हो जाती है नेकी की, बता रहा हूं आपको इसका इलाज क्या है, देखा आप नेकी जब आप कोई नेक अमल कर रहे हैं तो एक अमल अगर आप कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ये चीजें बैठ जाएंगी, फिर आप कुछ नहीं करेंगे, बताऊं क्या चीज है, सुन जब भी कोई अल्लाह तौफीक दे किसी नेक अमल करने की, जैसे मैंने तिनकी की मिसाल दी है, आपको मिट्टी की मिसाल दी है, और नमाजों की तो मिसाल बहुत बड़ी है, सजदों की मिसाल तो बहुत बड़ी है, तहज्जुद तो बहुत बड़ी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा नफिल रखना बहुत बड़ी चीज़ है, हज बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है, नवाफिल की चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है, तलावत तो बहुत बड़ी चीज़ है, जब अल्लाह सुबहान तआला जब ये तौफीक दे दे इस रिया और तकब्बुर से बचने के लिए, एक हमेशा आप बात करें, एक हमेशा बात करें, फौरन जब नेक अमल हो जाए तो अपने तजिया करके गर्दन झुकाएं, जैसे तौबा के लिए झुकाई थी ना, वहां क्या की थी हमने ऊंचा बोला, तो अब यहां हमने क्या करना है नेक अमल पर, जैसे ही नेक अमल तो फौरन जे अल्लाह ताला कमाल तेरा है कि तूने मुझे तौफीक दी, मैं तो इतना जलील आदमी हूं, अभी तो मैं गुनाह करके आया था और मेरे तो सोच भी नहीं सकता था मैं अल्लाह तेरे जिक्र में बैठ जाऊँ। कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने आगे सीधा तो मुझे कर रहा, मैंने बोला तेरा बड़ा शुक्र, ये अंदर बात हो रही है, मौत मना तेरा, तेरा फजल है, तेरा कमरम है, तेरा एहसान है, तेरा करम है मेरे मौला, तेरी सब कुछ था है, तू ना करता तो मेरे मौला मेरा तो कुछ होना ही नहीं था। सुभान अल्लाह, ऐसी सिफत पैदा हो जाएगी, ऐसी सिफत पैदा हो जाएगी कि इस सिफत पे अल्लाह सुभान तआला इंसान को गौस और कुतुब बनाते हैं। और ये सिफत खालिस और खालिस दुनिया के जो सबसे अजीम इंसान हैं, ये वो सिफत पैदा हो जाएगी हमारे में आपने, ये सिफत की बात कर रहा हूं। ये सिफत और सिफत सबसे बड़ी सिफत किससे मिलती है, यही सिफत उनकी सारी सिफात पे कवर करती है। याद रखने बड़ी ऊंची बात की है मैंने, बहुत ऊंची बात है, उन अजीम इंसानों की सारी सिफात में ये सिफत जो है सबसे ऊंचा दर्जे रखती है। वो अजीम इंसान कौन है, वो अंबिया अलैहिस्सलाम है, नबी पाक अल्लाह ताला के अंबिया और रसूल है, जो सबसे बड़े अजीम इंसान है, उनकी सारी सिफात में ये सिफत जो प्रोमिनेंट है, सबसे नुमाया सिफत है वो। अगर हमने ये फेल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पर तो उसके अक्स हमारे सीने में उतरना शुरू हो जाएंगे। जो ये अगेंस्ट किसके आती है तो सबसे बड़ी बीमारी है वो क्या है, ऊंचा बोल किबर। तो ये सिफत जो है सबसे ऊंची सिफत है, उसके मुकाबले में किबर होगा, वरना ये सिफत इंसान में पैदा हो जाएगी अगर ये फेल कर लेगा। वो सिफत कौन सी है, आजजी, तवाज़ा, अपने आप को कमतर समझना। जबान से नहीं कहना मैं तो जनाब बहुत मस्कीन हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं जनाब, मैं तो कहां आलिम जनाब, मैं कहां सूफी जनाब, नहीं नहीं नहीं, एक होता है कहना, एक होता है दिल से समझना, दिल में उतर जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या होता है कि जो जबानों से कहता है उस पर कोई एतबार नहीं करता, और जो दिल के अंदर होता है पूरी दुनिया उसकी शहादत देती है। बोले सुभान अल्लाह, मजा नहीं आया, ऊंचा बोले, सारी दुनिया उसकी गवाही देती है, उसको डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, रकाबत की जरूरत नहीं, अपने आप को नीचे बताने की जरूरत नहीं, सब कहेंगे यार कैसा फकीर आदमी, अजीब दरवेश आदमी, यार अल्लाह ने इतना उसको रुतबा दिया, देखो यार क्या मुकामात दिए, उसकी हालत देखो यार, दुनिया कह रही है। और वो क्या कह रहा है, यार मैं तो बहुत ही मुसीबत में फंसा हूं, मैंने बोला मेरा तो पता नहीं क्या हाल होगा, पता नहीं क्या, मेरा क्या कमाल। सुभान अल्लाह, तो इसका तोड़ क्या हो गया कि जितना अल्लाह सुभान तआला हमें अपनी नमाज से नवाजे, अच्छे अमल अता फरमाए, रात की इबादत नसीब फरमाए, जिक्र अस्कार नसीब फरमाए, तलावत कुरान नसीब फरमाए, हज पे हज नसीब फरमाए, जिस कदर फरमाए उसी कदर अपनी गरिया अल्लाह के सामने पेश करता हूं, है कुछ नहीं मौला, तेरा फजल, तेरा करम, तेरा सलाम, तूने दिया, मेरी तौफीक कहां, तेरी तौफीक। एक इतनी सीने की पे 10 मिनट लगा दें अल्लाह की तारीफ करने में, अल्लाह की सिफात का बयान करने में, बोले सुभान अल्लाह। फिर मुझसे पूछें आगे, मुझे बताएं कि हजरत दिल की क्या कैफियत हुई इस नेकी के बाद, फिर आप कहेंगे ये बड़ा मजा आया, सुभान अल्लाह, इतना मजा आया कि किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तो मजा बड़ा आया रोजा देने को, किसी को खजूर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुआ समझ आ गई, अच्छी समझ आए, पसंद आएंगे, अमल करेंगे। अब ये दो ऊंची सफात है, कौन सी सफात बताएं कि हमें हर वक्त तौबा की कैफियत नसीब हो जाए, तौबा की कैफियत में जाहिर हो जाएगा कि मैं गुनाहगार बनता हूं, बिल्कुल बकवास बनता हूं, इस दुनिया के अंदर मैं सबसे बकवास हरकतें करता फिर रहा हूं, सबसे खतरनाक इंसान दुनिया के अंदर वो शख्स होता है कि गुनाह करने के बाद भी कहे जी मैं कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो है ही नहीं जी, तभी तो गुनाह छोड़ता नहीं है, उसको कितना झंझोड़े आप वो गुनाह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको गुनाह समझते ही नहीं हो। अल्लाह, किसी इंसान को आप कहीं जहर है, जहर पिएगा क्यों हाजी साहब, पिएगा कभी नहीं पिएगा, कभी नहीं पिएगा, कभी जहर है कभी, मैं तो नहीं पींदा जी, पिएगा कभी नहीं, तो वो आदमी गुनाह क्यों कर रहा है जिसको कहा जाता है ये गुनाह है, फिर भी क्यों डटा हुआ है, कि इसलिए वो गुनाह को गुनाह समझ नहीं रहा। जो जहर को जहर नहीं समझेगा वो पी जाएगा कि जहर है ही नहीं जनाब, मैं तो पीता हूं, ये तो शरबत है, फिर क्या होगा, वो जिंदा रहेगा मरेगा। जो इंसान गुनाह को गुनाह समझ नहीं रहा तो गुनाह छोड़ेगा नहीं, जब गुनाह छोड़ेगा नहीं तो जहन्नुम के अलावा उसको मिलेगी क्या चीज? कितनी बड़े बड़े मर्ज के अंदर वो मुबतला इंसान, मुझे बताएं आप, स्पॉट बता गया, पता चला कि इसके बाद इस गुनाह के बाद ये सजाएं मिलती हैं, ये सब चीजें, कहते हाई कोई नहीं, फिर जाकर उसने वही काम कर, क्योंकि वो तौबा कर ही नहीं रहा। जो गुनाह समझेगा वो क्या करेगा? तौबा। जो तौबा करेगा अल्लाह कहेगा मेरा दोस्त है ये, तो एहसास हो रहा है इसको, क्योंकि इसकी सिफ्त के अंदर है गुनाह करना, इसके वजूद में गुनाह की धक्कत दौड़ रही है, बोस वो तो करेगा गुनाह, लेकिन कमाल यह है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने आप को, मैं गुनाहगार हूं, तू मालिक है, तू खालिक है, मेरे मौला बख्श मुझे, मैं माफी मांगता हूं, बख्श दे मुझे। अल्लाह कहे मैं तुझे बख्श दिया, कर फिर गुनाह। यहां पर क्या फरमाया प्यारे नबी रहमतुल्लाह ने, फरमाते हैं उस बंदे को, तू क्यों रोता है, कितना गुनाह है कि जमीन के बड़ा आसमान तक तेरे गुनाहों से भरे हुए हैं? इतने तो नहीं कहते, इतने भर ले उस रब के सामने जाके, तू एक दफा कहे कि मुझे अल्लाह माफ कर दो तो वो भी खत्म कर दे। लेकिन कहता नहीं इंसान वो गुनाहगार, सबसे बड़ा फंसा हुआ इंसान वो शख्स, अल्लाह मेरे मौला ऐसे शख्स को तू बचा, जहन्नुम की आग से कभी नहीं बच सके, अतराफ सनूर नहीं उसका। ये कैफियत का पैदा होना बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। दूसरी कैफियत जो मैंने बताई, इट्स नॉट जोक, अब सुन तो रहे यार, कहते नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं, ये जो कर गया वो वली अल्लाह बन गया, जिसने दो कैफियतें कर ली वो दोस्त अल्लाह का बन गया, वो गौस बन गया, वो कुतुब बन गया, अल्लाह के करीब पहुंच गया, जन्नतों के आला दर्ज में चला गया जिसने दो सिफतें कर ली। तो ये कोई आसान है? ये बातों से आती है बातें, ये सिफात के बातों से आ जाएंगी, ये किताबों पढ़ के आ जाएंगी। मैंने आपको कह दिया और आप कहते हैं हाँ जी हम करेंगे, आप कर लेंगे, मैं शर्त अगर तो नहीं कर सकते, गारंटी दे रहा हूं। पता है नहीं कर सकेंगे, बड़ी चीज है। इसीलिए कुरान ने इसके लिए आगे रास्ता दिखाया है, आगे रास्ता दिखाया है कि तुम नहीं खुद कर सकोगे ये चीजें, ना मुमकिन है, सुन तो लिए, तुम ये नहीं कर सकोगे, इन चीजों को करने के लिए तुम्हें एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तुम करोगे। या अल्लाह वो क्या कदम है? तो मैं कौन हूं आसाद की, मजा नहीं आया, सुभान अल्लाह। इन दोनों कैफियत को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला कहता है कि एक चीज तुम्हें करनी पड़ेगी, वो क्या, कि किसी ऐसे इंसान को दोस्त बनाओ जो ऑलरेडी ये काम कर चुका है, वो अल्लाह वाले होते हैं। तो उनमें कमाल ये होगा तुम्हें सुभान अल्लाह ऑलरेडी पेश की, उसमें सिफात पैदा हो चुकी होती हैं, जब तुम उसके पास जाके दोस्ती करोगे, उससे ताल्लुकत बनाओगे, इन दो चीजों को हासिल करने के लिए, और कोई मकसद ना हो, ये भी याद रखो, और कोई मकसद, इन दो चीजों को हासिल करने के लिए आप किसी ऐसे अल्लाह वाले के पास जाएंगे जो ऑलरेडी ये काम कर चुका है, इन सिफात को हासिल कर चुका है, तो फिर तुम्हारे लिए वो मकनातीस का काम करेगा। बोले सुभान अल्लाह। एक तो होता है लोहा, लोहा लोहा को तो नहीं खींच सकता, खींच सकता है, क्यों, कि उसमें करंट ही नहीं पैदा हुआ। तो इसी तरह होता है अल्लाह वाला, अल्लाह वाले के अंदर करंट पैदा हो चुका होता है, जैसे ही जाएंगे खींच लेगा आपको। तभी क्या कौन उमासा देखिए बड़ा काम करती है, सच्चों के साथ हो जाओ, मुत्तकी बन जाओगे अल्लाह ताला के अंदर। जो सच्चे लोग जो कोशिश करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस रास्ते को पाना चाहते हैं, कहते हैं हमें सिफ्त हो, वो एक मिनट जाया नहीं करते, वो तलाश कर ही लेते हैं अल्लाह वाला। किसी को इंग्लैंड में मिलता है, किसी को मैनचेस्टर में मिलता है, किसी को बोल्टन में मिलता है, किसी को कहीं मिलता है, किसी को जनाब बड़ोच में मिलता है, किसी को सूरत में मिलता है, किसी को कराची में मिलता है, किसी को पाकिस्तान में मिलता है, और किसी को गदाई शरीफ में मिलता है। ऊंचा अपनी अपनी किस्मत किसको कहां मिले, वो जहां उसको मिल गया फिर वो पहुंचता है, क्योंकि उसने तो भाई दुनिया छोड़ अपनी आखिर समान ली है। लेकिन जो डफर होते हैं, जो परवाह ही नहीं कि मर जाएंगे तो जाएं जी जहन्नुम में जाएं, कहीं जाएं, रोटी कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो, उन्होंने कहा हिलना है, वो तो सती जिंदगी में चले जा रहे हैं अपने पास, मज बड़ा तय कर लो, दफना कर लो, इन बारी इसको बारीकी समझते हैं। ये तो जिंदगी की हो रहा है जो कुरान हमें बता रहा है, एहदिन सिरात मुस्तकीम, यही है वो जिन पे इनाम किए अल्लाह पाक ने। इनाम वाले कौन लोग हैं? ये लोग हैं। तो फिर इन दो सिफात को तकीदन से नहीं आएंगी, जो करना चाहता है वो क्या काम करे, क्या काम करे? ये नहीं यहां करेंगे, हमारा बाप भी नहीं कर सकता, जोर लगा लिया। इस काम करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? किसी अल्लाह वाले को तलाश करना पड़ेगा। तलाश करने का तरीका क्या है? कि जिसकी तकीर सबसे बड़ी है वही अल्लाह वाला, जिसकी दाढ़ी सबसे बड़ी है वही अल्लाह वाला, जिसका इमाम सबसे ऊंचा है वो अल्लाह वाला। पता है? नहीं, इसको हासिल करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम बताऊं आपको? ये अल्लाह का मामला है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि दो रकात नमाज नफिल हाजत पढ़े रोजाना, और पढ़ने के बाद कहें कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा शख्स अता फरमा दे जो मेरे लिए आसान भी हो, उसके पास पहुंचना भी आसान हो, और मेरे दिल को भी लगता हो तेरा दोस्त। ऊंचा अगर ना मिले ना अल्लाह वाला, तो फिर मुझसे आगे बात करना। अल्लाह सुबहाना ताला ऐसे इंसानों के लिए अपने दोस्तों को उसके घर पहुंचा देते हैं। कैसे पहुंचा देते हैं? कुंडी खड़ जाएगा, यार मैंने प्यास लगी है, मैंने गिलास पानी पिला सकते हो तो सी जनाब? बोले सुबह जनाब जरूर पिलाओगे, अंदर आ जाओ जनाब, आप उसको अंदर ले गए, अंदर ले गए बेड़ा घर खत्म, बेड़ा करते ठंडा सब सब कुछ दिल दे बैठते आदमी साथ में, पानी पीते पीते काम बन जाता, अल्लाह ने पहुंचा दिया। उसके चेहरे में नूर जमाने लगता है, उसकी बातों में मजा आने लगता है, उसकी गुफ्तगू में मजा लगता है, उसके साथ बैठने में लुत्फ आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर गुम होना शुरू हो जाता है। सुबहान अल्लाह, बस उसका काम बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसने दुआ की अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मैं तो तेरा प्यासा हूं, तेरे मुझे तो अपने रास्ते पर पहुंचाना, मैं ऐसे नहीं चाहता, गुनाह की हालत में नहीं मरना चाहता। लेकिन अफसोस कि हम ये सारे काम नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। हम ये पता है कि फलां जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, फलां कोर्स करेंगे तो ये मिल जाएगा, फलां रिश्ता करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह तो ये टैक्स बचाने के लिए ये काम कर लो, उसके पास जो तो ऐसे टैक्स बचेगा, उसके पास ये होगा, फलां सारी दुनिया काम करेंगे, किसी को नहीं पता कि मौत के आने के बाद हमें क्या चीज़ काम आएगी, उसके लिए भी कोई जुस्तजू कर रहे हैं। बात समझ आएगी मेरी? नहीं आई? फिर रिपीट करो, नीचे से करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है हमने? अल्लाह से रोटी की नहीं, पानी की नहीं, बीवी नहीं, किस चीज की दुआ करनी है? ऊंचा बोलना कि अल्लाह ताला अपना दोस्त मिला दे हमें। करेंगे? आवाज बड़ी नीचे आ रही है। उसके बाद फिर तलाश जारी करेंगे, फिर जब अल्लाह वाला मिल जाए तो उससे क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे। जब दोस्ती करेंगे तो उसके साथ फिर चलना शुरू हो जाएंगे। जब उसका चलना शुरू हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस लिए आपने उसको मांगा था वो सिफात हमारे में पैदा शुरू हो जाएगी, और वो कैफियत हमारी हो जाएंगी कि गुनाह करेंगे तौबा करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नेक काम होंगे तो शुक्र करेंगे, उसका फजल तलाश करेंगे, और फिर क्या मिलेगी? अल्लाह की रजा मिलेगी, अल्लाह राजी हो जाएंगे। लोग पूछते हैं अल्लाह राजी कब होते हैं? इस तरह राजी होते हैं अल्लाह ताला, ये है अल्लाह की रजा का रास्ता। वत्तबूर रिदवानुल्लाह जालिका फजलुल अजीम, अल्लाह ताला कहता है कुरान में, आ जाओ मेरे हकामत की तरफ, मैं जो कहता हूं मेरी बातों को सुन लो, रिज़वानुल्लाह, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, और ये मेरा सबसे बड़ा फजल होगा जिससे मैं राजी हो जाता हूँ। बोले सुबहानअल्लाह। रोटी की फजल नहीं, बीवी की फजल नहीं, बच्चे की फजल नहीं, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल मेरा ये होगा कि मैं इस इंसान से राजी हो गया, अल्लाह ताला मुझसे आपसे राजी हो गया।